بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحزن. درس نمبر 4. آج کا سبق میں ایک سوال کے جواب میں بھی ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میڈم، ہم اپنا فوکس اچھی بات پہ کیسے مینٹین رکھیں. جب ہم ایک اچھی بات سنتے ہیں تو اس وقت وہ ہمیں فوراً یاد ہو جاتی ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا موٹیویشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا کبھی کسی کی کوئی ڈسکریجنگ بات سن کے یا کسی ڈسٹریکشن میں پڑ کے ہم اپنا فوکس کھو دیتے ہیں اور نہ ہمارا ٹیمپو وہ رہتا ہے جو پہلے والا ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدگی سے اس چیز کو نہیں فالو کر سکتے اور وہ پھر ہمارے اندر ایک دکھ کا باعث بنتی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی اچھی عادتیں اور اچھی باتیں جو ہیں انہیں مینٹین نہیں رکھ سکتے. تو جو پیج ہم لا تحزن کتاب کا آج پڑھنے والے ہیں وہ پیج نمبر 43 ہے، اور اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں جو ٹاپک ہے جو استاد القرنی نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے کنورٹ اے لیمن انٹو اے سویٹ ڈرنک. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈھیر سارا کھٹا لیمو کا رس نکال کر دے دے تو آپ اس میں چینی ڈال کے اس سے مزے کا شربت بنا کے پی جائیے. یعنی کہ ایک نگیٹو سچویشن کو اور ایک بے فائدہ چیز جو بے فائدہ نظر آتی ہے اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں یوز کریں، یا یہ ہے کہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. تو انٹرسٹنگلی میرے سوال کا جواب بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، اور جو حصے میں آج کور کروں گی وہ تقریباً سارے اس بات سے ریلیٹڈ ہیں. استاد کا یہ کہنا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو نقصانات ہیں ان کو اور اپنے فیلئرز کو منافع میں اور کامیابی میں، سکسیس میں بدل دیتے ہیں، اور جو انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہوتے، جو اس کے برعکس ہوتے ہیں اور جو نگیٹو سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک مصیبت میں پڑ کے اپنے لیے 4 اور 5 اور 10 اور مصیبتیں بنا لیتے ہیں اور وہ مزید اس پستی کے گڑھے میں گرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گرنے سے روک نہیں سکتے اور وہ ایک مصیبت میں سے 2 مصیبتیں بڑی آسانی سے بنا لیتے ہیں. تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ مصیبت جب آتی ہے تو اس پہ واویلا کرنا جو ہے وہ 2 مصیبتیں ہیں، کہ ایک تو اب مصیبت آ گئی ہے اور دوسرا آپ نے اتنا شور مچا دیا ہے کہ آس پاس کے سارے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کر دیا ہے، بلکہ خود کو بھی اتنا زیادہ ڈپریس کر دیا ہے کہ اب آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے. مصیبت کو حل کرنا تو دور کی بات ہے، اب آپ نئی نئی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا اور وہ مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جا کے انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کی جو ریاست قائم کی، اور اس کے بعد مدینہ سے جو فتوحات ہوئیں اور امت مسلمہ جس قدر دنیا میں پھیلی، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ٹیچنگ ہے کہ ایک انسان جب اپنا فوکس نہیں لوز کرتا اور اپنا کام جو ہے وہ صبر سے اور توکل کے ساتھ اور ریگولرلی کرتا رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کس قدر کامیابی سے نوازتے ہیں. کیونکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا عمل پسند ہے، اللہ کو متواتر عمل پسند ہے جو متواتر کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو. یعنی اٹ از ناٹ دا کوانٹٹی کہ آپ ڈھیر سارا اچھا کام ایک دن میں کر لیں اور پھر 3 دن تک سوتے رہیں، رادر اٹ از دا کوالٹی کہ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک اچھا کام کرتے رہیں لیکن ریگولرلی کرتے رہیں، تو وہ چیز اللہ کو بھی پسند ہے. اور ریگولیرٹی اس لیے اچھی ہے، شروع میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے ریئیکشنز اور رسپانسز جو ہیں وہ ہماری عادات بن جاتے ہیں، اور ہماری عادات جو ہیں، ہمارا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ ہماری عادات بناتا ہے، اور ہماری عادات آگے چل کے ہماری پوری پرسنالٹی بناتی ہیں. تو اچھی عادات کا ہونا بہت ضروری ہے. अब इसमें सबसे पहली बात जो है, अगर हम सुन्नत से देखें कि सुन्नत की मिसाल अगर हम देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई थी तो आप गारे हिरा में बैठे हुए थे और आप अक्सर लोगों से कट के और लोगों से अलग हो के गारे हिरा में जाकर गौर करते थे और फिक्र करते थे और दुआ करते थे वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको पहली वही नसीब हुई थी। गैर मुस्लिम लोग भी ये कहते हैं कि तन्हाई जो है और सेक्लूजन यानी कि दुनियावी स्टिमुलाई से दूर होकर गौर व फिक्र करना जो है, इट इज़ द सीट ऑफ ऑल विजडम, यानी कि आप सारा जितना विजडम है दुनिया में वो ऐसे लोगों ने दिया है जो सेक्लूजन में बैठ के गौर करते हैं। तो अब मैं चूँकि आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे रही हूँ, तो इसमें से प्रैक्टिकल टिप तो आपने ये सीखनी है कि मैं सारा दिन तो आपको सेक्लूड होने का नहीं कह सकती, हो सकता है आप जॉब करते हो, आपकी एक फैमिली हो, आपकी एक सोशल लाइफ है, आप हो सकता है स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज जाना होता हो, यूनिवर्सिटी जाना होता हो, वो तो मैं आपको 100% सेक्लूजन नहीं कह सकती कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह या उनके सहाबा की तरह पहाड़ की चोटी पे जाकर और एक गार में अकेले बैठ के गौर व फिक्र करें। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट जो इससे हम सीखते हैं वो ये है कि दिन का कोई एक हिस्सा डेडिकेट कर दें जब आप सिर्फ जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका मिशन है, चूँकि मैं तो आपको कुरान पढ़ा रही हूँ और मैं आपको ये ला तहज़न की किताब पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आपसे पहले ही एक घंटे का वादा लिया था। जब मैंने ये कोर्स शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि आपने दिन में एक घंटा अलग करके रखना है, आधा घंटा या मे बी 40 मिनट्स तो मैं आपसे बातें करूँगी, ये पोस्ट होगी जो इस किताब के चैप्टर से और फिर कुरान के रेफरेंस से और चंद और किताबों की मदद से मैं आपके लिए एक लेसन तैयार करूँगी, लेकिन उसके बाद 20 मिनट से लेके आधा घंटा आप अपना काम करें, कुरान खोल के वो आयात देखें, उनके तर्जुमे देखें, जो मैं कह रही हूँ इसके नोट्स बनाएं। तो एक घंटा मैंने आपसे ये वादा लिया था और इसका मकसद भी यही था कि आप इस कोर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर आप बैठ के कहीं पे ये मेरी बात सुन रहे हैं तो जाहिर है आप मुझे तवज्जो दे रहे हैं, आपकी अटेंशन जो है वो इस वक्त मेरी तरफ़ है और ये टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी बात किसी गाने की तरह सुन के ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद उसे भूल जाएंगे तो मेरा तो क्या नुकसान होगा, असल नुकसान तो आपका हुआ है कि आपने वो आधा घंटा या 40 मिनट जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं। तो पहली बात जो कि एक अच्छा काम करने का जब आप इरादा करते हैं और उसे मुतवातर करने का इरादा करते हैं तो वो टाइम की कमिटमेंट है। टाइम हमारा जो है वो ये एक बुज़ुर्ग एक वाइज मैन ने कहा है कि टाइम इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड एंड इट इज़ आवर वर्स्ट एनिमी। तो अगर हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो ये हमारा बेहतरीन दोस्त है, और अगर हम इसे ज़ाया करें और फजूल गपशप में और फजूल कामों में लगाएं और फालतू सोने में लगाएं और सुस्ती में लगाएं और सोचने में फजूल सोचों में लगाएं तो ज़ाहिर है फिर ये हमारा वर्स्ट एनिमी है। और ये है कि वक्त फिर जो इंसान वक्त ज़ाया करता है दरअसल वक्त उसे ज़ाया कर रहा होता है। तो आप एक टाइम की कमिटमेंट बनाएं। दूसरी बात देखें, सुन्नत से ही हमने ये बात सीखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टाइम डेडिकेट किया हुआ था अपने कारोबार से और अपनी फैमिली से दूर अपने पर्सनल विजडम गेन करने के लिए और अपनी सोच के लिए अपनी मेडिटेशन के लिए, तो वो टाइम जो था वो उन्होंने एक फ़िज़िकल स्पेस उसके लिए रखी हुई थी। वो हमेशा गारे हिरा में जाते थे, उसके अलावा कोई रिवायत नहीं है कि वो किसी और पत्थर पे जाके बैठ गए या वो किसी और गार में चले गए। गारे हिरा वॉज़ दिस फ्रेंडली प्लेस जो उन्होंने अपने लिए ढूंढी हुई थी, और वो उसके अगर जो गारे हिरा जिन्होंने देखा हुआ है माशाल्लाह वो भी, और अल्लाह सबको देखने की तौफीक अता फरमाए, बड़ा छोटा सा एक गार है, उसमें बमुश्किल दो लोग खड़े होके नफल पढ़ सकते हैं और उसकी एंट्रेंस भी बड़ी छोटी सी है और वो बड़ा शैलो सा गार है, कोई डीप गार नहीं है। तो इतनी छोटी सी जगह लेकिन ही फाउंड इट फ्रेंडली एंड ही हैड दैट, उनको वो वहाँ पे एक फेमिलियर एक मोहब्बत भरी वाइब्रेशन महसूस हुई। फिर जब गारे हिरा में इंसान बैठता है तो उसकी जो पिछली दीवार है या चट्टान जो है उसमें से आपको बैतुल्लाह सामने नज़र आता है, खाना काबा आपको नज़र आता है। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त जगह थी कि आप वहाँ बुलंदी पर बैठे हुए हैं और आप नीचे देख रहे हैं और सामने आपके खाना काबा है, तो वो भी एक यानी मेडिटेशन फ्रेंडली जगह थी, वहाँ पे कोई ऐसा सीन था जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी और वो वहाँ पे बैठ के बड़ी आराम से अल्लाह की ज़ात में और अल्लाह की बातों के बारे में गौर करते थे और जो भी वो मेडिटेट करते थे वहाँ पे उनको आसानी होती थी। तो आप भी पहले टाइम डेडिकेट करें, उसके बाद एक स्पेस डेडिकेट करें। हो सकता है वो आपका राइटिंग टेबल हो सकता है वो एक कुशन हो सकता है, जैसे मेरे पास एक मुंशी डेस्क है, मैं इसकी तस्वीर आपको भेज दूंगी। सो आई एम वेरी अटैच टू दिस प्लेस। या ये मुंशी डेस्क होता है या एक गौ तकिया होता है जिसके ऊपर मैं अपनी किताब रख के, और मुझे ज़मीन पर बैठ के काम करने की आदत है, तो उस पर बैठ के मैं लिखती हूँ या मैं रिकॉर्ड करती हूँ या मैं सुनती हूँ, जो भी पढ़ रही होती हूँ मैं वहाँ, वो मेरी एक स्पेस है और बड़ी एक नॉन डिस्क्रिप्ट सी स्पेस है। आप तस्वीर में देख लीजिएगा, कोई उसमें स्पेशल बात नहीं है, न उसमें कोई स्पेशल फर्नीचर नहीं है, वो बस एक कमरे का एक कोना है, लेकिन मुझे उसकी आदत पड़ गई है। इसी तरह आप भी अपने लिए एक स्पेस बनाएं। उस स्पेस में आपका कागज़, कलम, आपकी कुरान मजीद, आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, हो सकता है आपको कोई तस्वीरें पसंद हों, कोई पेंटिंग्स पसंद हों, कोई चीज़ जो जिससे आप अटैच हों, वो चीज़ें आप सारी वहाँ पे रख लें और वो आपकी एक प्राइवेट स्पेस होगी जिसको आप उस टाइम में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ जो हम सुन्नत से ही सीखते हैं वो ये है कि जैसे भी हालात आ जाएं, जैसा भी हमें हालात का सामना करना पड़े, कभी हम डरे हुए होते हैं, कभी हम डिप्रेस होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम थके हुए होते हैं, लेकिन हमारी ये जो टाइम की कमिटमेंट है, हमने हत्तल वसा कोशिश करनी है कि हम टाइम की कमिटमेंट पूरी करें। वो जो हमने टाइम कमिट किया हुआ है वो हम उसी काम को दें जिसके लिए हमने कमिट किया हुआ है। यानी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शादियों की तकरीबों में वो एकदम से घड़ी देख के और वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी जी, मेरा लाइब्रेरी का टाइम हो गया। यकीन करें, मैंने ये अमेरिका में देखा था, लेकिन वो एक कहीं पे पार्टी थी, एक न्यू ईयर पार्टी में मैंने देखा था, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये अगर टाइम मेरा निकल गया ना तो मुझे बड़ा मसला होगा, अच्छा मैं लाइब्रेरी से हो के वापस आता हूँ। तो उसमें वो डिनर का टाइम गुजर गया था, लेकिन वो वापस आए और फिर उन्होंने सबके साथ डिज़र्ट खाई और अच्छा टाइम गुजारा। उन्होंने कहा कि देखो, अगर मेरी लाइब्रेरी मिस हो जाती तो मेरा मूड बड़ा ख़राब होता और फिर मैं आप मेरे ये गपशप मेरी आप नहीं इंजॉय कर सकते थे। तो इतनी सख्त कमिटमेंट थी उनकी कि उन्होंने वो घंटा वहीं जाके गुजारना था जहाँ वो उनकी कमिटमेंट थी और जहाँ उनकी अटैचमेंट थी। तो ये कमिटमेंट आपने अपने आप के साथ करनी है। अच्छा, इस कमिटमेंट को मेंटेन रखने के तीन तरीके हैं। एक तो आप, पहला तरीका, आप अपना टाइम टेबल ऐसे बनाएं कि आपने किसी, जैसे मैं ये करती हूँ कि मैं असर की नमाज़ से पहले, आजकल जो वो सोने का एक टाइम होता है, कभी मैं सो भी जाती हूँ, आधा घंटा शायद सो जाऊँ, लेकिन वो टाइम जो है वो बहुत फारिग होता है। अक्सर लोग बस सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, नौकर भी जाके क्वार्टर में छुप जाते हैं, तो वो टाइम जो है मुझे बड़े आराम से घंटा डेढ़ जो है वो मिल जाता है पढ़ाई का और मैसेज रिकॉर्ड करने का और आपके साथ इंटरेक्ट करने का, और मैं सारे मैसेजेस रिव्यू भी करती हूँ, तो ये बड़ा मेरा एक सेफ़ टाइम है और मेरा बड़ा अच्छा टाइम है ये। इसी तरह तो एक तो ये कि आपने अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि आपने वो घंटा उसमें हाईलाइट करके रखना है। अगर आप अपना टाइम टेबल लिखते हैं, जैसे मैं भी कभी कभी लिख देती हूँ अगर मेरे काम बहुत ज़्यादा हों, तो आपने हाईलाइटर से उस एक घंटे को मार्क कर देना है। जैसे मेरे लिए वो एक घंटा जो है वो 4 या 4:30 से लेकर तो 6 बजे तक या 5:30-6 बजे तक है, फिर मैं उठ के असर पड़ती हूँ। तो ये घंटा डेढ़ जो है वो आपने पक्का अपने जहन में और अपने टाइम टेबल में और अपने फ़ोन में आपने वो कंफर्म कर लेना है कि ये मेरा टाइम है। दूसरी बात ये है कि आप, जैसे मैंने ये किया है कि मैं किसी के साथ कमिटमेंट कर लेती हूँ कि हाँ जी मैं इतने बजे आपको ये लेसन भेज दूँगी। वो ये कमिटमेंट जो है ना, जब आप किसी और के साथ एक तो अपने साथ कमिटमेंट है जिसमें हम बड़ी आसानी से डंडी मार सकते हैं, लेकिन जब आप किसी और के साथ कमिटमेंट करते हैं तो वो तो फिर जाहिर है वो इंतज़ार कर रहा होगा, वो आपको आगे से मैसेज करेगा, वो पूछेगा, वो कहेगा बोले बड़े दावे करके तो पीछे से गायब हो गई हैं। तो इसमें एक अना का एलिमेंट आ जाता है, एक गैरत का एलिमेंट आ जाता है, और आप मजबूरन, यानी आपको ये होता है कि ओहो मैं तो सो जाऊं लेकिन अब लेसन भी तो मैंने भेजना है और वो भी मैंने तैयार करना है। तो दूसरों के साथ कमिटमेंट, और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कब हमेशा बहुत शुक्रिया अदा किया है। जैसे मौलाना रूमी की मसनवी में है कि ए अल्लाह मैं तेरा आईना हूँ, यानी कि मैं एक आईना हूँ, मेरी ज़ात एक आईना है और तू जो भी मुझे कहता है और जो भी तूने तख्लीक किया है तुझे वो इस आईने में नज़र आता है, तो भला मेरी ज़ात के आईने के बग़ैर फिर तू अपनी अज़मत कहाँ देखेगा। तो बड़ा यानी वो तो खैर बहुत बड़े एक वलीउल्लाह थे और उनकी बातें जो हैं वो समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मकसद ये है कि शागिर्द की एक रिसेप्टिव शागिर्द की ज़ात के बग़ैर उस्ताद का कोई तसव्वुर नहीं है। तो हमेशा कोशिश करें कि, और जो सबसे अच्छी कोशिश है वो ये है, जैसे इस्लाम में भी हमें कहा गया है कि आप एक हलका बनाएं, एक सर्कल ऑफ़ फ्रेंड्स बनाएं, लाइक माइंडेड पीपल, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द उनके सहाबा थे। जब उन्होंने पहली वही सुनी तो उन्होंने भाग के अपनी प्यारी बीवी को बताया और बीवी ने ही उस वक्त उनको संभाला और उन्हें तसल्ली दी, और ये इस्लाम पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऐसा एहसान है जिसके बारे में अंग्रेज़ों ने और नॉन मुस्लिम लोगों ने कहा है कि अगर खदीजा ना होती तो माज़ल्ला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद दिमाग ख़राब हो जाता, ही वुड हैव लॉस्ट हिज माइंड बिकॉज ऑफ फियर। ये वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कहा है कि खदीजा ने उस वक्त जो उनको सहारा दिया और समझाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन से आके जो सबक सीखा था वो अपनी बीवी को सुनाया, और उसके बाद हमेशा इनके पास सहाबा होते थे, जब आप कुरान सुनते थे तो आप जाके फ़ौरन उन्हें सुनाते थे। तो इस तरह जब आप टाइम कमिट कर लें और स्पेस कमिट कर लें और टाइम टेबल में अपना वो टाइम डाल दें और पक्का इरादा कर लें तो फिर आप अपना एक सर्कल बनाने की कोशिश करें, एक हलका बनाने की कोशिश करें। आप हों और एक और कोई हो, दो हों, तीन हों, चार हों, जितने भी हों, लेकिन आप सब कमिटेड हों और आपके दिल में ये पक्का एक इरादा हो कि हाँ हमने ये किताब मिल के पढ़नी है, हमने कुरान मिल के सीखना है, हमने ये वाला काम जो है ये मिल के करना है और इतने अरसे में करना है, तो वो बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाती है। उसके बाद पहली जो मैंने आपको कहा था कि अपने टाइम टेबल में डालें और अपने आप के साथ कमिटमेंट करें, दूसरा ये है कि अपना हलका बनाएं और उनके साथ कमिटमेंट करें, और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सिद्क दिल से नियत करें, यानी कि बाकायदा दो रकात नफल पढ़ें और अल्लाह के सामने दुआ करें और अल्लाह कहें कि या अल्लाह मैंने इस अच्छे काम की नियत की है, प्लीज़ आप इसमें मेरी मदद करें और मुझे आप इसमें साबित कदम रखें। और यही दुआ, जो दुआ आप उस वक्त मांगें नियत करते हुए, वो आप हर नमाज में मांगें, क्योंकि ये दुआ का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम अल्लाह के सामने अपनी मिशन स्टेटमेंट दोबारा से दोहरा रहे होते हैं। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, हम दिन में पांच दफ़ा वो दोहराते हैं। तो इससे ज़्यादा याद दहानी किस सिस्टम में है, मतलब आप अपने फ़ोन में भी आखिर कितने रिमाइंडर्स लगाएंगे, कितने अलार्म लगाएंगे। एक दफ़ा आप अल्लाह के सामने हाथ उठा के और अल्लाह कहें कि या अल्लाह प्लीज़ मेरा ये काम जो है ये अच्छा कर दे और मैं अच्छी तरह से कुरान सीख लूँ और मैं अच्छी तरह से अपना ये काम कर लूँ, और आप दिन में पाँच दफ़ा ये कहें, तो एक दफ़ा असर नहीं करेगा, दो दफ़ा नहीं करेगा, आखिर पाँच दफ़ा में से कभी तो असर करेगा। दिन में आप स्ट्रांगली इस चीज़ को दोहरा रहे होंगे। तो ये जो थी ये सिर्फ स्टार्टिंग आदतें थीं जो आपको तैयार कर देती हैं एक अच्छा काम करने के लिए। उसके बाद जब चूँकि जब सबक हमने शुरू किया था वो ये था कि आपने हर चीज़ में पॉजिटिव देखना है, तो हर चीज़ में पॉजिटिव जो है वो मैंने आपको मिसाल दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने मक्का छोड़ा है। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं हमारे इमाम हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनको बहुत ज़्यादा खलीफा वक्त ने टॉर्चर किया था और उन्हें कौड़े मारे थे क्योंकि वो उनसे कोई फतवा लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुसलसल इनकार किया, यहाँ तक कि अवाम के रिक्वेस्ट पर और उनके प्रोटेस्ट पर खलीफा वक्त जो थे उनको इमाम अहमद बिन हम्बल को आज़ाद करना पड़ा और वो फिर सुन्नत के बहुत बड़े इमाम बने। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया हैं, मशहूर इमाम हैं, उनको क़ैद में डाला गया था और उन्होंने क़ैद में जो स्टडी की थी और सब कुछ किया था वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्कॉलर बन के क़ैद में से निकले थे। इसी तरह इमाम सरखसी हैं जिन्होंने बहुत मशहूर एग्जिजेनेसिस कुरान की लिखी है, तफसीर लिखी है, उनको कैद किया गया था और उनको एक कुएं के यानी एक सूखा कुआं था उसके बिल्कुल एंड में रखा गया था, और वो कुएं में रहते हुए उन्होंने 20 वॉल्यूम इस्लामी फ़िक्ह के लिखे थे। मशहूर हैं वो, फ़िक्ह सरख्सी जो है बहुत मशहूर है, और वो उन्होंने कैद में लिखे थे। इसी तरह इब्ने असीर जो थे वो माजूर हो गए थे, और उसके बाद उस माजूरी के बाद चूँकि वो बाहर आ जा नहीं सकते थे तो उन्होंने जामेउल उसूल और अन्निहाया, बहुत मशहूर किताब है ये, उन्होंने ये लिखी थी। फिर और ये हदीस के बारे में किताबें हैं। इमाम इब्न अलजौज़ी जो हैं उनको बगदाद में एंटर होने से मना कर दिया गया था क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे और बड़े हासिद लोग थे वहाँ पे, और उनको मजबूरन यानी वो बगदाद से निकाल दिए गए, तो वो ट्रैवल करते थे और जगहों पे जाते थे, और इस तरह वो कुरान की जो 7 किरतें हैं वो उसके स्पेशलिस्ट बन गए क्योंकि उन्होंने हर जगह जाके वो कुरान सुना और सीखा और वो 7 किरतों के सबसे मशहूर स्पेशलिस्ट बने थे। तो ये तो चंद मिसालें हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। इसके अलावा मशहूर जो हमारी तफसीर है, जो हम बरेसगीर पाक व हिंद से जो अजीम तरीन तफसीर निकली है तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी की, वो उन्होंने कैद में लिखी थी, वो उन्होंने जेल में लिखी है। और मिस्र से जो सबसे मशहूर यानी मशहूर आलम तफसीर है फ़ी ज़िलालुल कुरान जो सैयद कुतुब शहीद की है, वो भी उन्होंने जेल में लिखी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक रूटीन अपनाया। ये तो मैं सारी आपको कुरान और हदीस से मुतल्लिक बातें बता रही हूँ ना, और हमारे लिए सबसे मुश्किल भी दीन का काम बाकायदा करना होता है, और उसकी वजह तो अब आगे आ रही है, मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन जब हम एक अच्छा काम करने का इरादा करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। तो पहले मैं आपको एक मज़े का किस्सा सुनाती हूँ कि एक दफ़ा, और ये किस्सा मैं पहले बहुत दफ़ा सुना चुकी हूँ कि हज़रत हंजला जो हैं, जो कि शुहदाए उहद में उनका बहुत बड़ा दर्जा है, हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो बाज़ार में जा रहे थे तो उनके सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, और उन्होंने कहा कि ए हंजला, कहाँ जा रहे हैं आप या क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा सवाल किया उन्होंने। तो हज़रत हंजला ने कहा कि या अबू बकर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं मुनाफिक हो गया हूँ। तो हज़रत अबू बकर ने उनको कहा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो हज़रत हंजला ने कहा कि जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में होता हूँ तो मुझे तो जन्नत और दोज़ख नज़र आ रही होती है, लेकिन जब मैं वहाँ से घर जाता हूँ तो बखुदा मुझे कुछ भी नहीं याद रहता। मैं अपने घर के और कारोबार के कामों में लग के मुझे तो कोई बात उनकी नहीं याद रहती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि या हंजला, ऐसी कुछ हालत मेरी भी है। तो वो उनके साथ चल पड़े। आगे जब गए हैं तो हज़रत अबू हुरैरा मिले उन्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और वो बहुत यंग थे। हज़रत अबू हुरैरा जो हैं, ही वाज़ वन ऑफ़ द यंगेस्ट सहाबा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है तो उस वक्त भी आई डोंट नो बेरली कितने साल के थे, मतलब इस्लाम उन्होंने एक लड़का होते हुए कबूल किया था। तो हज़रत अबू हुरैरा ने उनसे हाल पूछा और इन असहाब ने उनको यही बताया कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे होते हैं तो बड़ा हमें सब कुछ समझ आ रहा होता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो हमें सब कुछ भूल जाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि बस ऐसी हालत मेरे दिल की भी है। और ये तीनों असहाब जो हैं उन्होंने कहा चलें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अपना ये मामला डिस्कस करते हैं। तो जब ये हुजूर की महफ़िल में पहुँचे हैं तो वहाँ हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान, हज़रत अली वो भी बैठे हुए थे। तो ये ज़रा एक साइड पे हो के ज़रा एम्बेरस्ड से खड़े हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ तवज्जो करके पूछा कि क्या बात है, आप बताएं क्या हाल है। तो अब ये तीनों चुप खड़े हैं कि अब हम अपनी बात करें कौन, बात बताएं कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत अबू हुरैरा ने आगे बढ़ के कहा कि या रसूलल्लाह, हंजला जो है ना ये मुनाफिक हो गए हैं। तो यानी बहुत ही क्यूट बात है कि वो उन्होंने उनकी शिकायत लगा दी, हालांकि तीनों बात वही करने आए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि क्या हुआ हंजला? तो हज़रत हंजला ने अपना वो मसला बयान किया कि हम तो आपके सामने तो हमें सब कुछ समझ आता है, जब हम घर जाते हैं तो बातें भूल जाती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या हंजला, अगर तुम्हारे दिल की हालत जो मेरे पास होती है, अगर वही तुम्हारे घर में हो और बाज़ार में हो तो फ़रिश्ते तुम्हारे साथ आके बाज़ारों में मुसाफहे करें और तुम्हारे बिस्तरों पे फरिश्ते सोएं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ये जो दुनिया है जिसमें बाज़ारों में फरिश्ते नहीं हमें नज़र आते और हमारे बिस्तरों पे भी फरिश्ते नहीं सो रहे होते, ये इंसानों की दुनिया है। और इसमें इस तरह की मामूलात जो हैं, यानी कि बातों का भूल जाना और एक अच्छी बात सुन के बाद में उसको मेंटेन ना रख सकना और दिल की हालत अदलते बदलते रहना, ये सब नेचुरल हैं। और साबित कदम वही है जो हर दफ़ा दूर हो के फिर करीब आ जाए, क्योंकि कल्ब जो है, हमारा दिल जो है, इसको अरबी में कल्ब कहते हैं और कल्ब का मतलब है उलटने पलटने वाला। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर दुआ है, या मुकल्लिबल कुलूब, ए मेरे दिल को उलटने पलटने वाले, सब्बित कल्ब कल्बी, मेरा दिल को इस बात दे दे, अला दीनिक, तेरे दीन पर, अपने दीन पर मेरे दिल को इस्बात दे दे, इसे मजबूत कर दे। तो ये तो मैंने आपको एक मज़े का वाक़या सुनाया कि असहाब भी, सहाबा भी इस तरह फ़ील करते थे और उनको भी मुस्तकिल मिजाजी रखने में मसला होता था। अब मैं आपको इसकी एक वजह बताती हूँ और वजह खासी खौफनाक है, इसलिए इससे पहले मैंने आपको एक अच्छा सा क्यूट सा रिवायत सुना दी मैंने आपको। वजह यह है कि जब शैतान को धुतकारा गया था और अल्लाह की तरफ से उस पर लानत बोली गई थी और उसे जन्नत से निकाला गया था, तो उस वक्त शैतान ने अल्लाह की कसम खाई थी, फ़बिइज़्ज़त का, अल्लाह की कसम खा, उसने कहा तेरी इज़्ज़त की कसम या अल्लाह, मैं इसे बहकाऊँगा, मैं इस आदम को बहकाऊँगा। और फिर उसने कहा था कि मैं तेरे रास्तों में बैठूँगा, मैं, ए अल्लाह, मैं तेरे रास्तों में बैठूँगा और मैं वहाँ से इसको बहकाऊँगा। तो ये एक बात कुरान में बड़ी लतीफ़ समझने वाली बात है ये, कि अल्लाह के रास्ते जो हैं, ज़ाहिर है वो सिरात मुस्तकीम है, वो सीधे रास्ते हैं, वो नेकी के रास्ते हैं जो अल्लाह ने हमें बताए हुए हैं कि इन पे चल के आप मुझ तक वापस पहुंच सकते हैं, आप मुझ तक वापस पहुंचेंगे। तो शैतान जो है वो उन्हीं रास्तों में बैठता है, जो गुमराह रास्ते हैं और जो गुमनाम और तारीक राहदारियाँ हैं और जो गुनाह के रास्ते हैं और जो मासी के रास्ते और नाफरमानियों के रास्ते हैं और फासिकों के और फाजरों के रास्ते हैं, उस पे शैतान को बैठने की क्या ज़रूरत है? उस पे तो ऑलरेडी गुमराह लोग हैं, उस पे तो ऑलरेडी लोग जहन्नम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, शैतान को वहाँ बैठ के क्या मिलेगा? वो क्या बहकाएगा? बहकाए हुए को वो क्या बहकाएगा? उसने तो बहकाना है उसको जो अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है, जो सिरात मुस्तकीम पे है, जो सीधे रास्ते पे चल रहा है। तो जब एक दफ़ा आप सीधे रास्ते का इरादा कर लेते हैं और एक दफ़ा जब आप एक अच्छा काम करने की नियत करते हैं, तो शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। आपने शैतान से बहुत ज़्यादा पनाह मांगनी है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा कह के हर काम शुरू करना है। उसके बाद ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलना है और हर वक्त होशियार रहना है। जो आपके दिल में सुस्ती आती है ना, और जो कसलमंदी आती है और जो प्रोकेस्टिनेशन आती है, खैर है कल कर लेंगे, खैर है कज़ा नमाज़ पढ़ लेंगे, खैर है अब इतना ज़्यादा भी क्या, ये शैतान की सरगोशियाँ हैं, इनको पहचानना सीखें। और इनसे कोई भी नहीं महफूज, हम बड़े कमज़ोर लोग हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जितना हम अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं उतना शैतान का गलबा बढ़ता है, और शैतान के गलबे को रेजिस्ट करना ही इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। शैतान का मतलब क्या है? शीन थ्वा नून, शैताना, दूरी पैदा करने वाला। जो अल्लाह से दूरी पैदा करता है वो शैतान है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो कोई अकीदा हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई आवाज़ हो, जो चीज़ इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है वो शैतान है। ये शैतान जो है वो रेड रंग का जिन जो है वो कहीं होता होगा, लेकिन उसने दुनिया में जगह जगह अपने इम्पल्सेस और अपने स्टिमुलस और अपने छोटे छोटे चीले चांटे उसने छोड़े हुए हैं हमारे पीछे, कि वो हमें किसी भी तरह अल्लाह के रास्ते पे सीधा चलने से रोक दें। तो जो फीलिंग्स आपको होती हैं और जो आपको महसूस होता है कि आपका काम मुश्किल हो गया है और आप जो है साबित कदमी नहीं कर सकते हैं, तो उदास बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं उदास होना, बिल्कुल नहीं गम करना। वापस औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना है। सुन्नत की दुआएं हैं, जिसमें से एक दुआ मैंने आपको बताई, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, है, मेरा दिल जो है उसको तू साबित कर दे। और मैंने आपको ये जो मैंने आपको आज बातें समझाई हैं, हैरत की बात है कि ये जो है ये सब कुछ बिल्कुल किताब में भी यही टॉपिक्स हैं। 3-4 सफ़े जो हैं वो इसी चीज़ में हैं कि आप अकेले रहना सीखें और आप अल्लाह जो है वो सबसे अच्छा है, अल्लाह से दुआ करनी है, डिस्करेज नहीं होना है, हर चीज़ में पॉजिटिव देखना है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक आउटलाइन दे दी है कि टाइम की कमिटमेंट करें, स्पेस की कमिटमेंट करें, अपने टाइम टेबल में उसे डालें, अल्लाह के सामने नियत करें और हर नमाज में फिर वो दुआ मांगें और अपना एक हलका बनाएं, अपना एक सर्कल बनाएं जिसमें आप वो अच्छी बातें शेयर करें। अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैं ये काम करूँगी, और अपने हलके से जब आप कमिटमेंट करेंगे तो फिर तो बादले ना ख्वास्ता और चारों ना चार और मरते क्या ना करते आप वो काम ज़रूर पूरा करेंगे। तो उम्मीद है कि इन बातों को आप हेल्पफुल पाएंगे। जो आपके क्वेश्चंस हों ज़रूर मुझे भेजें, और अल्लाह हम सबको अपने रास्ते में साबित कदम बना दे और शैतान के गलबे से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।